मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, AFEIS के आज 9 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूँ अपने एक नौजवान साथी आलोक कुमार का, जो झाझा बिहार से हैं, जिन्होंने एकेडमी की 7 से 21 मार्च के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आज मैं मुख्य विषय के रूप में हरियाणा में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। और आज दूसरी घटनाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सच पूछिए मुख्य विषय के लिए बहुत ही कम समय नहीं के बराबर मिल पाएगा, लेकिन फिर भी जितनी ज़रूरी बातें हैं वो हम लोग करेंगे। आज कोविड डे है अपने हिसाब से, तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी सफलताएं हमें मिल रही हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़ करके 92% से ऊपर हो चुकी है, मृत्यु दर भी घट करके 1.48% हो चुकी है। पूरे दुनिया में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है उसे देखते हुए भारत की स्थिति को तो आप और भी ज़्यादा आप यूँ कह लीजिए कि सुखद कह सकते हैं। लगातार जो मामले हैं वो घटते चले जा रहे हैं, जबकि जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें कमी नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप दिल्ली को देखिए तो दिल्ली में लगातार मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि हमने असतर्कता बरती तो फिर से इसका आघात हमें सहना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, आपने न्यूज़ में एक बात सुनी है, एक न्यूज़ सुनी है कहना चाहिए, सामान्य तौर पर मैं उसकी यहाँ चर्चा करना चाहूँगा, और वो ये कि प्रधानमंत्री जी ने एक रो पैक्स फेरी का उद्घाटन किया है जो घोघा और हजीरा के बीच है। चूंकि ये जल परिवहन से संबंधित है और जल परिवहन पूरे के पूरे परिवहन को आप देखिए, यातायात आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और खासकर भारत में जो नेविगेशन का सिस्टम है वो चूंकि बहुत पुअर है और इसको लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए मैंने इस घटना का चयन किया है। घोघा और हजीरा के बीच, ये बेसिकली जो गुजरात है, गुजरात का नौ परिवहन व्यवस्था शुरू की गई है, ये सौराष्ट्र को दक्षिण गुजरात से जोड़ेगी। और आप देखिए कि जब इस ये जो चूंकि शुरू हो गई है ये फेरी, तो जो 375 किलोमीटर की दूरी है वो घटकर 90 किलोमीटर रह गई। कैन यू इमेजिन, 375 किलोमीटर की दूरी जब समुद्र के द्वारा, नदियों के द्वारा पूरी की जाएगी तो ये केवल 90 किलोमीटर रह जाएगी, और जो जर्नी 10-12 घंटे में पूरी होती थी वो अब 3-4 घंटे में पूरी होगी। सोच करके देखिए, जब आप जल से यात्रा करते हैं तो जो स्पीड है वो कम हो जाती है। और इसके जो दूसरे फायदे होंगे पर्यावरण की दृष्टि से, क्योंकि पर्यावरण भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए ये बता रहा हूं मैं, कार्बन उत्सर्जन इससे कम होगा क्योंकि कम पेट्रोलियम जलेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, और ईंधन प्रतिदिन कम लगेगा। मतलब बताया गया है कि लगभग 9,000 लीटर ईंधन प्रतिदिन कम लगेगा, इसकी शुरुआत हुई है। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें, घोघा एवं हजीरा के बीच रो पैक्स फेरी जो की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, और प्रधानमंत्री जी ने और भी कुछ बातें उस समय की हैं, और खासकर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, ब्लू इकोनॉमी, कि भारत ब्लू इकोनॉमी के पर विशेष ध्यान दे रहा है। जब हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी, इसका मतलब है जल से संबंधित अर्थव्यवस्था। तो आप मत्स्य पालन पर ध्यान देंगे, आप मछुआरों की व्यवस्था पर ध्यान देंगे कि उनके कल्याण के लिए काम करेंगे, तो इसे हम पूरी तरह से कहते हैं ब्लू इकोनॉमी। और नो डाउट कि जब आप जल परिवहन की व्यवस्था करते हैं तो वह भी ब्लू इकोनॉमी के तहत ही आता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारा पोत मंत्रालय है उसको पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय नाम बदलने की भी को प्रक्रिया में अभी सरकार है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो खबर है इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वह अमेरिका के नए राष्ट्रपति का निर्णय हो चुका है। जो बाइडन अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और अब तक के सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति। आज के अखबार इससे भरे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में बातें करनी चाहिए, हालांकि खासकर भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा या इनके राष्ट्रपति बनने से भारत की क्या स्थिति होगी दोनों देशों के संबंधों को लेकर के, वो सारी बातों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं उनकी चर्चा जानबूझ करके नहीं कर रहा हूँ। अखबारों में काफ़ी कुछ लिखा गया है, आप जान लेंगे। हमारे लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो कमला हैरिस हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। कमला हैरिस, कमला भारत की हैं और जो हैरिस वो जमैका की है। मैं जो भारत की हैं जमैका की हैं उसको समझ लीजिए, कि जो कमला हैं, कमला हैरिस इनका पूरा नाम है जो उपराष्ट्रपति बनी है, इनकी माँ बहुत पहले अमेरिका गई थी। वहाँ उनकी मुलाकात जमैका के एक युवा थे मिस्टर हैरिस, उनसे हुई, उनसे उनको उन्होंने शादी कर ली। और इस तरीके से जो कमला हैरिस हैं इनकी माँ भारतीय हैं और जो पिता हैं वो जमैका के हैं। लगातार आपने इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, इन्होंने बहुत खूबसूरत भाषण भी दिया है, अखबारों में आज छपा है। काश कि वक्त होता तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने रखता, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपनी बातें कही हैं। तो खासकर भारत काफ़ी कुछ इस मामले में निश्चिंत है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। बहुत सी बातें उन्होंने कही भी हैं, इस तरह के इशारे भी दिए हैं। कुछ चीज़ों में थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति भी है, लेकिन इन पर हम लोग कभी और बात करेंगे। फ्रेंड्स, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के फैसले से पहले अदालत ने, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, खासकर SC ST एक्ट को लेकर के। ये आपको अपडेट करने के लिए मालूम होना चाहिए। उन्होंने ये बात कही है कि जब SC ST का कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के ऊपर जो सवर्ण है, अपने को अपमानित करने का, जाति को आधार बनाकर अपमानित करने का आरोप लगाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल आरोप लगाने से ही उसे अपराधी नहीं माना जा सकता, नहीं माना जाना चाहिए, अपराध के लिए गवाह होने चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी बात कही है कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि जो आरोपी है उसने शिकायतकर्ता का उत्पीड़न करने के लिए उसकी जाति का उपयोग किया है, तब तक उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया है उसके भी अपने कानूनी अधिकार हैं, और उसको उसके अधिकारों से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि ST SC समुदाय के किसी व्यक्ति ने उस पर आरोप लगाया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है और आपके विषय से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, तो आपको ये अपडेट मालूम होनी चाहिए। एक तूफान इस बीच में आया है, तूफान का नाम है एटा, जिसने खासकर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का जो हिस्सा है, जिसे आप मध्य हिस्सा कह सकते हैं, वहां तबाही मचाई है। और इससे जो प्रभावित होने वाले देश हैं, बेहतर होगा कि आप एटलस पर इन्हें देख लें। मैक्सिको का नाम आपने सुना ही है, देखिए बिल्कुल एक डंडी सी, पतली सी डंडी है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है। जो दूसरे देश है मैक्सिको के अलावा, उसमें है ग्वाटेमाला, निकारागुआ, होंडिरास, कोस्टारिका, अल सल्वाडोर और बेलीज, ये भी प्रभावित हुए हैं। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा एटलस में देख लें, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, और वो है हरियाणा में अभी एक आरक्षण की व्यवस्था की गई है, हम आरक्षण कह सकते हैं इसे। हरियाणा गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वहाँ जो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब है, देखिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब हैं उसके जो 75% जो जॉब होंगे वो हरियाणा के लोगों के लिए ही रिजर्व होंगे। बस उसमें उन्होंने एक ही क्राइटेरिया रखा है कि केवल वहीं तक के जॉब हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्व होंगे, जिनकी जो सैलरी है वो पर मंथ 50,000 होगी, उससे नीचे हो सकती है। अगर उससे ऊपर की सैलरी है तो फिर वो रिजर्व नहीं होंगे, यानी कि 50,000 रुपये प्रति माह तक की सैलरी वाले जो जॉब हैं, 75% जॉब वो हरियाणा के लोगों के लिए निर्धारित होंगे। फ्रेंड्स, इसको लेकर के इकोनॉमिक टाइम्स ने एक एडिटोरियल कमेंट लिखा है, वो मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसमें सजेस्ट किया गया है कि प्रेसिडेंट को चाहिए कि वो इस जो डिसीजन है, इस डिसीजन को रोकें, इसमें हस्तक्षेप करें। केंद्र सरकार को भी अगर जरूरत पड़े तो इसमें प्रेसिडेंट को ये सलाह देनी चाहिए। इसे सीधे सीधे उन्होंने जो हमारा संविधान है उसके अगेंस्ट कहा है। संविधान के कुछ मौलिक अधिकार आपको मालूम है कि आर्टिकल 14 है जो सीधे सीधे समानता के अधिकार की बात करता है, आर्टिकल 15 है जो किसी भी तरह के भेदभाव के विरोध में है, चाहे वो जन्म स्थान हो, यहाँ तो जन्म स्थान का ही हम देख रहे हैं ना कि हरियाणा जन्म स्थान है, और इसी तरह से आर्टिकल 19 है जो कहीं भी रह के पूरे देश में कहीं भी आपको कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इस तरीके से इसमें तीन आर्टिकल्स मेंशन किए हुए हैं, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19, इसके यह विरुद्ध है। और साथ ही साथ इसमें यह एप्रिहेंशन, आशंका व्यक्त की गई है कि अगर सच में यह लागू हो गया तो अभी हमारे पूरे देश का जो आईटी हब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो नो डाउट गुड़गांव है, बहुत ही बड़ा हब है, केंद्र है, तो यहां से लोग फिर क्या करेंगे, सीधे सीधे उसके पास ही ग्रेटर नोएडा है, वहां शिफ्ट होने लगेंगे। क्योंकि जब आप प्रतिबंधित हो जाएंगे कि आपको हरियाणा के व्यक्ति का ही चयन करना है, तो सीधी सी बात है कि फिर टैलेंट चयन करने के मामले में जो आपकी सीमाएं हैं वो बहुत सीमित हो जाएंगी। तो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए इसे स्वीकार कर पाना उतना आसान नहीं होगा। और फिर एक बात ये भी है कि आज हरियाणा ने किया, फिर दूसरे राज्य करने लगेंगे, फिर और राज्य करने लगेंगे अगर ये लागू हो गया तो ऐसी स्थिति में तो फिर जो पूरे देश को एक बनाने की जो बात हो रही है इकोनॉमी की दृष्टि से, वो कैसे होगी। तो इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक विकास है, उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, सपना पांडे, दीप शिखा चक्रवर्ती दमोह मध्य प्रदेश से, केशव कुमार मधुबनी बिहार से, अमृत नारायण सतपति, हरिराम सैनी चुरू राजस्थान से, आशुतोष आचार्य, अंकुश शिमला से, सावन नैन हरियाणा से, खुशबू प्रजापति जौनपुर उत्तर प्रदेश से, अनीता यादव, जन्मेजय शर्मा वृंदावन उत्तर प्रदेश से, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, और कर्मवीर सिंह, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।